आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनम है और मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में किया है और आज हम लोग आपकी इंग्लिश रीडर स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स और इसको लिखा है विलियम सोरोयान ने। सो विलियम सोरोयान जो है वो एक आर्मेनियन अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, प्लेराइट थे और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और उनको 1940 में अपने लिखने की वजह से उनको पुलित्जर प्राइज मिला है। सो पुलित्जर प्राइज स्टूडेंट्स, ये जिस तरह से ऑस्कर होता है एंटरटेनमेंट फील्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट, उसी तरह से जब हम लोग राइटिंग की बात करें, बुक की बात करें, तब पुलित्जर प्राइज जो है वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स माना जाता है। सो विलियम सोरोयान ने बहुत कुछ लिखा है आर्मेनियन इमिग्रेंट्स के बारे में जो आप्रवासी होते हैं, वो जो कैलिफोर्निया में आके सेटल करे हैं, जिस तरह से वो खुद भी एक आर्मेनियन इमिग्रेंट थे जो कि कैलिफोर्निया में पले बड़े। सो उन्होंने उनकी लाइफ पे बहुत कुछ, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं और आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं में से एक है। तो आइए इस स्टोरी को देखते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, माय कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माय हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम। Aaron, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I struck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. It's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anything else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. So, यहाँ पे जो हमें दो लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, जिसका एक का नाम होता है एरम और एक का नाम होता है मुराद। सो ये दोनों जो हैं ऑफकोर्स अपने बहुत ही यंग एज में हैं, 9 साल के हैं और 9 साल के बच्चों में क्या होता है, पूरी दुनिया जो है वो एक मैजिकल लगती है उन्हें, काफ़ी मिस्टीरियस लगती है और हर कुछ उन्हें बहुत खुश कर जाती है, वो लोग पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। सो एक दिन की बात है कि जो मुराद है वो एक सफ़ेद घोड़े पर सवार एरम के घर आता है भोर के वक्त, जैसे ही सुबह होने वाली होती है, और वो कहता है कि तुम आओ, चलो मेरे साथ चलो। एरम को कहता है कि चलो हम लोग दोनों मिलकर के इस सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। और अकॉर्डिंग टू एरम, एरम जो है वो मुराद के बारे में क्या बता रहा है कि मुराद जो है वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और वो अपनी लाइफ को भरपूर तरह से जीना चाहता है और इसी वजह से, उसकी बदमाशियों की वजह से, काफी सारे लोग उसको बहुत ही नॉटी और क्रेजी बोला करते हैं। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty-stricken. Every branch of the Garo-Gilenian family was giving in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. सो यहाँ पे भले ही ये जो एरम होता है उसकी जो सबसे फाइनेस्ट जो लॉन्गिंग होती है, लाइक सबसे ज्यादा जो जिस चीज को वो चाहता है, वो जो है वो घोड़ों से उसको बहुत प्यार होता है और उस घोड़े की वो सवारी करना उसको काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन क्योंकि ये और इसकी पूरी ट्राइब, इसकी ट्राइब का क्या नाम है, गारो गिलेनियन, सो ये जो ट्राइब है वो सेंचुरी से, मतलब 100-200 सालों से ये लोग पुअरी हैं, और इसको अच्छी तरह से पता था कि ये जो है, मतलब ये इसका कजन, ना ही वो खुद वो घोड़े को अफोर्ड कर सकता है। और ये अपनी जो इसका जो ट्राइब है, ये इसके बारे में बता रहा है कि ये जो इसकी ट्राइब है ना, ये काफी उसूलों और सिद्धांतों वाली थी। तो भले ही ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होने के लिए फेमस हैं, इतने गरीब कि मतलब अब इनकी गरीबी पे हंसी उड़ाई जा सकती है, यू नो इट इज कॉमिकल इनफ कि ये लोग, मतलब बूढ़े लोग भी अपने अपने बेलीज, मतलब अपने पेट कैसे भरते हैं वो भी एक राजी है। लेकिन भले ही ये लोग पूरी दुनिया में अपनी गरीबी के लिए मशहूर हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी ऑनेस्टी के लिए भी ज्यादा जाने जाते हैं। और इनके लिए जो है वो सबसे पहले इनका अपना जो प्राइड है वो है, उसके बाद ऑनेस्टी है, एंड देन वो सही और गलत में डिफरेंस करना जानते हैं। तो मतलब भले ही ये लोग गरीब हैं, लेकिन इनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हैं। और इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि ये तो घोड़ा अफोर्ड कर सकते नहीं है, और ये इस चीज को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होता है कि ये जो है वो उसके भाई ने, उस मुराद ने ये चीज चुराई होगी, घोड़ा चुराया होगा। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैज एनीथिंग टू डू विद माई कजन और विद मी और विद एनी ऑफ द मेंबर ऑफ अ फैमिली, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, it must have been stolen it, and I refused to believe he had stolen it. No member of the Garo Ghilanian family could be a thief. I stared first at my cousin, then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me, and on the other frightened me. So, ये कह रहा है कि मतलब इसकी जो, इसका एक एक कश्मकश देखो कि एक तरफ इसकी चाहत है यानी वो घोड़ा है, और एक तरफ इसकी, इसके ट्राइब की, इसकी फैमिली की जो रेप्यूटेशन है वो है। सो वो जो है वो उस घोड़े को देख रहा है, वो उसकी, इवन उसकी जो सांसें चल रही है घोड़े की, वो भी एरम को जो है वो एक्साइट कर देती है, उसको बहुत ज्यादा खुश कर देती है। लेकिन फिर भी उसको ये सच मालूम है कि वो क्या उसके कोई घर के बड़े जो जाग रहे हो, सो रहे हो, मतलब क्यों ये वर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट जो है वो भोर के वक्त का है, जब सुबह होने ही वाली है। तो मतलब कोई भी डेड और अलाइव, कोई भी ये घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है। एंड फॉर दैट मैटर ये उसकी जो ट्राइब वाले हैं वो एक चोर हो भी नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि उसके कजन ने भी चोरी नहीं करी है। तो अब जो है एरम वो एक तरफ घोड़े को देखता है और एक तरफ अपने कजन मुराद को देखता है, तो वो एक पल में उसको देखकर कितनी खुशी होती है, और दूसरे ही पर उस पल उसको बहुत ज्यादा डर भी लगता है कि मतलब ये मेरी फैमिली पे आ जाएगा कहीं। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, If you want to ride. It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. If you were crazy about the horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Let me put some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. So, यहाँ पे अब क्या होता है? ये वो उससे पूछते हैं कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? और उसका कजिन जो है वो कहता है कि जल्दी तुम बाहर आओ अगर तुम्हें ये घोड़े की सवारी चाहिए तो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंफर्म हो गया कि ये पक्का इसने कहीं से चुराया हुआ है. तो लेकिन वो अब स्टीलिंग को बता रहे हैं, मतलब चोरी के वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके बता रहे हैं कि ये चोरी चोरी नहीं हुई, क्योंकि वो लोग वो घोड़ा चुरा के किसी को बेचने थोड़ी वाले थे कि उनको उससे पैसे मिले. ये तो बस वो लोग उसकी सवारी करना चाहते थे और ये शायद ये एक चोरी में का पार्ट हुआ भी नहीं. सो वो कहता है कि अच्छा रुक जाओ थोड़ा, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो. तो उसने कहा हाँ ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी पहन करके आओ. और फिर क्या था, फिर जो है जो एरम था वो अपनी खिड़की से कूद जाता है और वो दोनों घोड़े के पीठ पे सवार हो जाते हैं. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, विनयार्ड्स, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. Every family has a crazy streak in somewhere. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Before him was our uncle Khosrowi, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. A man of so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm. Pay no attention to it. So, ये लोग जो है ना वो शहर के किनारे हिस्से पे रहते थे और ये जैसे ही वो जो है वो लोग घोड़े पे बैठे और वो घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था कि वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये दिखा रहा है कि कितने तेजी से वो लोग घोड़ा दौड़ा रहे थे. और हम लोग अगर मुराद की बात करें तो कहा जाता है कि हर किसी के फैमिली में थोड़ा सा एक यू नो जिसको हम लोग मराठी लोग बोलते हैं ना येड़ा, थोड़ा सा जो है येड़ापन हर किसी में रहता है. सो मुराद ने ये येड़ापन किससे लिया है? खुसरोवे, अंकल खुसरोवे से. सो उनके बारे में, ये जो है बहुत पहले एक इंसान थे तो उनके बारे में मशहूर था कि वो जो है इतने ज़्यादा मतलब खुसवर थे और इतने ज़्यादा इरिटेबल थे और वो हर किसी को हर बात पे एक ही चीज बोलते थे कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. मतलब अरे सब चलता है यार, सब चंगा सी, इस तरह से वो हमेशा बोला करते थे. सो मुराद को कहा जाता है कि उसका ये क्रेजीनेस जो है वो अंकल खुसरोवे से ही आया है. दैट वॉज ऑल. नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. The man Khosrowi sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khosrowi roared, "Enough, it is no harm, I say." My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. That's how it was our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit in our tribe had been, from the beginning, capricious and vagrant. So, yahan pe jo hai, एक बार का इंसिडेंट बताया जा रहा है कि इतने ज़्यादा क्रेजी थे वो अंकल खुसरोव जो थे कि एक बार उनके खुद के घर में आग लग गई और उनका 8 साल का बेटा उनके पास दौड़ते हुए आया कि पापा आग लग गई है. और उस इंसिडेंट पे भी अंकल खुसरोवे ने यही बोला कि अरे कोई बात नहीं है, सब चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो भी क्या, वो ऐसे सिंपली नहीं बोलते थे, वो काफी गुस्से में ये चीज बोला करते थे। तो यही सेम जो लेगेसी है ये किस में आई है, मुराद में आई है। लेकिन मुराद के पापा अंकल खुसरोव नहीं थे, उसके पापा जो थे वो जोराब थे। एरम बताता है कि इसके ट्राइब में ऐसे ही चलता है कि एक जो है कोई भी इंसान अपने बेटे का बायोलॉजिकल फादर जरूर हो सकता है, मतलब वो उसका पापा हो सकता है, किसमें, सिर्फ मतलब खून के रिश्ते में। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा, उसका हाव भाव कैसा होगा, तो वो किसी और से भी मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बाप जो है, बाप से बेटा हमेशा मिले ही, वो किसी पे भी जा सकता है। और इसी तरह का हर किसी में जो है वो अलग अलग तरह का स्पिरिट, अलग अलग तरीके की सोच, और सबका नेचर अलग था। और ये पूरे डिफरेंट तरीके के सोच वाले लोग जो है वो पूरे ट्राइब में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। वी रोट एंड माई कजिन मुराद सैंग फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। We let the horse run as long as it felt like running. At last, my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. "That is up to the horse," my cousin said. "Get down, the horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with a horse." "Well," I said, "any way you have with a horse, I have also. For the sake of your safety, let us hope so. Get down." "All right," I said, "but remember, you have got to let me try to ride alone." I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Vazare, run!" The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. So, ये दोनों ने बहुत वक्त तक दोनों ने साथ मिलकर के सवारी करी और जब तक वो घोड़ा थक नहीं गया। अब जो है मुराद ने कहा कि एरम तुम नीचे उतरो, मुझे अकेले इस घोड़े की सवारी करना है। तो एरम ने कहा कि हाँ मैं एक शर्त पे उतरूंगा, अगर तुम भी मुझे अकेले सवारी करने दोगे तो उसने कहा, मतलब थोड़ी शेखी बगाड़ते हुए, कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं बता दूं कि मेरा एक अपना तरीका है घोड़ों के साथ, मुझे आता है उनको हैंडल करना, तो क्या पता तुम ये चीज हैंडल कर पाओ या नहीं। सो एरम वाज लाइक कि जिस तरह का जो भी तरीका तुम्हारे पास है वो सेम तरीका मेरे पास भी है, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस मैं उतर रहा हूँ नीचे, लेकिन मुझे भी अकेले राइड करने का मौका मिलना चाहिए। तो अब क्या हुआ, देखते ही देखते ये जो मुराद है वो सफ़ेद घोड़े पे उसको उड़ाता हुआ लेके गया, खेत खलियानों सब जगह से वो क्रॉस करा। एंड वो एक इरिगेशनल डिच, मतलब आपने गाँव में देखा होगा ये जो खेतों को पानी देते हैं ना, तो वहाँ पे उसने डिच, मतलब क्या होता है खड्डा, तो उसमें वहां पे पड़ा पानी पड़ा था, और इस वजह से वो पूरा जो घोड़ा था और जो मुराद था वो लोग जो जब लौटे तो वो लोग पूरा गीले हो चुके थे, तर बतर हो चुके थे पानी से। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। राइड, ही सेड। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable. The horse did not move. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. I kicked into the muscle of the horse. Once again, it reared and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. So, अभी क्या हुआ कि जब वो वापस आया तो एज प्रॉमिस्ड अब एडम की बारी थी अकेले घुड़सवारी करने की। तब अब जो है, अब जैसे ही वो बैठ गया ना एडम, तब उसको सडनली एक डर लगा कि अब जो है ये घोड़ा जो है वो चल नहीं रहा था। तब मुराद ने उसको बोला कि एक काम करो, तुम उसके मसल में किक करो, मतलब उस घोड़े को थोड़ा किक करो, तब जो है वो आगे बढ़ेगा। एंड सेम वही हुआ, घोड़े ने जो है वो अपना सर उठाया और वो दौड़ने लगा। लेकिन जैसे मुराद जो है वो खेत खलियान की तरफ गया था घोड़ा दौड़ाने के लिए, ये जो है ये कहाँ जाने लगा, ये विनयार्ड्स में जाने लगा, मतलब जहां पे अंगूर के पेड़ लगे होते हैं उस तरफ जाने लगा। और फिर वो जाकर के कहाँ, किसके विनयार्ड में गिरा, दिक्रन हलेबियन के, और वहां पे चला गया और काफी ज्यादा थोड़ा सा उसने जो वाइन्स थी वहां पे तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद एडम को घोड़े से गिरा दिया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। सो यहाँ पे क्या था कि उन लोगों का एक और कंसर्न क्या था कि अब जो है वो सुबह होने वाली है, तो मुराद ने घोड़ा देने से पहले उसको क्या पहले बोला था कि जल्दी करो, हम लोगों को जो है ये घोड़ा वापस जहाँ पे था वहां पे पहुंचाना भी है। और इसी वजह से जब वो गिर गया एडम, तो मुराद को उसके गिरने की फिक्र नहीं थी, बल्कि ये था कि सही टाइम पे इस घोड़े को अपने ठिकाने पे पहुंचा देना है। तो ये जो घोड़ा था ये तो एडम को गिरा करके दूसरे डायरेक्शन में दौड़ चुका था। सो एडम और मुराद ने बोला कि देखो, जहां पे भी मिले उसको अच्छे तरह से डील करना है और हम लोगों को ये घोड़ा वापस रख देना है। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। व्हाट विल वी डू, आई सेड। वेल, we'll either take him back or hide him until tomorrow morning. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. Where will we hide him? I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? So, क्या होता है कि अब जो है ये लोग घोड़े को ढूंढने निकलते हैं और मुराद को आधे घंटे बाद फाइनली वो घोड़ा मिल जाता है। सो अब क्या था, अब सुबह हो चुकी थी और पूरा शहर जो है वो जाग चुका था। और अभी क्या, अभी प्रॉब्लम क्या है उन लोगों की कि अब ये लोग जो है जहाँ का ये घोड़ा था ये लोग वहां पहुंचा नहीं सकते हैं। तो मुराद ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग एटलीस्ट कल सुबह तक इसको छुपाएंगे। तो उसने, मुराद ने एक जगह इनफैक्ट ढूंढ करके भी रखी थी कि वहां पे उसको, उस घोड़े को छुपा करके रखना है। और सडनली एडम को ये बात रियलाइज होती है कि इस घोड़े को जो मुराद है वो काफी टाइम से उसकी सवारी कर रहा था। ये हमें किस तरह से पता चलता है, क्योंकि जैसे ही एडम बैठा वैसे ही घोड़े ने उसको गिरा दिया, लेकिन मुराद के साथ वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल था। सो उसने उससे पूछा इनफैक्ट कि कितना टाइम हुआ तुम्हें इस घोड़े को चुराए हुए। तो वो कहता है कि कौन सी चोरी, मैंने कोई चोरी नहीं करी। हाँ, तो वो जो मुराद था, ऑफकोर्स वो लोग डिसाइड कर चुके थे कि ये लोग, ये चोरी नहीं है, ये तो बस वो लोग हर मॉर्निंग पे ये राइड के लिए ये लोग निकलते हैं। तो अगेन मुराद ने, सॉरी एडम ने इस चीज को वापस रिफ्रेस करा और पूछा कि अच्छा, ये तुम कब से इस घोड़े की सवारी कर रहे हो सुबह सुबह। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, ऑफकोर्स नॉट, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। ऑल राइट, आई सेड। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fedwijan. There were some oats and rye alfalfa in the barn. We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. So, जब उसने पूछा कि अच्छा मुझे बताओ तो सही कि तुम कब से जो है वो डेली इसको लेकर के राइड पे निकल रहे हो, तो मुराद क्या कहता है कि आज सुबह से पहले कभी भी नहीं। आरम कहता है कि तुम अफकोर्स ये बात झूठ बोल रहे हो। तब इस पे मुराद क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जब पकड़े जाएं तो तुम मेरी वजह से झूठ बोलो। सो हम में से किसी एक को ही झूठा रहने दो, तुम झूठ मत बोलो। अब ये मुराद क्या करता है कि उसको एक डेजर्टेड यानी एक उजड़े पड़े हुए वाइन यार्ड में लेकर के जाता है और उस घोड़े को बांध देता है। तो उसके बाद ये लोग अपने घर लौटने लगते हैं। तब जो है मुराद बताता है कि जब स्टार्टिंग में इस घोड़े को इतने अच्छी तरीके से बिहेव करवाना इजी नहीं था, ये जो है हमेशा जो है इधर से उधर दौड़ना चाहता था, लेकिन जैसे कि उसने बताया कि इसको घोड़ों को डील करने आना आता है और इस वजह से जो मुराद है वो अपने कंट्रोल के अंदर उस घोड़े को रख पाता था। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। वेल, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, ही सेड। I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khosrowe came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byrow, an Isaurian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand." My uncle Khosrowe became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse? That may be all right for you, a city dweller, to say," John Byrow said, "but what of my surrey? What good is a surrey without a horse? Pay no attention to it," my uncle Khosrowe roared. "I walked 10 miles to get here," John Byrow said. "You have legs," my uncle Khosrowe shouted. सो मुराद जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी जो है ये जिस तरह से घोड़े को डील करते हैं तुम्हें भी आ जाएगा जब तुम एक बड़े इंसान बन जाओगे। और बड़े इंसान से क्या था, क्योंकि उसका कज़न जो है वो 13 साल का था और एरम जो है वो 9 साल का था, तो वो थोड़ा थोड़ा तीसमर खान बनने की उसके सामने कोशिश कर रहा था। सो एक दिन क्या हुआ कि जो अंकल खुसरोवे थे वो उसके घर पहुँचे हुए थे जैसे ये लोग घर लौटे, और वो अपना उसकी मम्मा ने जो है आरम की मम्मा ने उसको अंकल को उसके चाय दी थी और वो अपना मज़े से सिगरेट पी रहे थे। और उसके बाद जो है सून आफ्टर एक और विजिटर उनके घर पे आता है, जॉन बायरो नाम का, जो कि एक फार्मर था, एक किसान था। तो वो जो है वो बताने लगा कि मेरा जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा घोड़ा चोरी हो गया। एंड हम लोग अंकल खुसरोवे को तो जानते ही हैं, उन्होंने फिर से चिल्लाना शुरू करा कि अरे तुम फिर जो हो वो किस बात के लिए रोना रो रहे हो, हम लोग ने यहाँ पे अपना जो हमारा होमलैंड था वो खो दिया और तुम एक घोड़े के पीछे अपना आंसू बहा रहे हो। तो उसने कहा कि जो है मैंने अपना घोड़ा खोया और मुझे इतना लंबा चल करके आना पड़ा, 10 माइल्स चल के आना पड़ा। तो अंकल खुसरोवे ने कहा कि क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है, बात बात पर रोना बंद करो। My left leg pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khosrowe roared. That horse cost me $60. I spit on money, my uncle Khosrowe said. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. My mother explained, he has a gentle heart. She said, it is simple that he is homesick and much a large man. The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. The farmer John Biro. He visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I run to ride. So, ये जो John Biro था, वो explain कर रहा था कि अरे ये तुम्हारे जो तुम शहरी लोग हो, उनके लिए कहना आसान है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं एक विलेज से हूँ, मैं एक गांव से हूँ, और मेरी बग्घी बिना घोड़े के किस काम की? और इस पे और उन्होंने बताया कि मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं इतना चल करके आया हूँ. और इस पे अंकल खुसरोवे को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं ऐसे पैसे पे और ऐसे घोड़े पे थूकता हूँ. और फिर वो गुस्से से वो चले जाते हैं. और जो एरम की मदर थी वो एक्सप्लेन करती कि नहीं, एक्चुअली वो अंकल खुसरोवे जो है वो इतने बुरे इंसान नहीं है, वो बस होम सिक है, उन्हें बस अपने घर की याद आ रही है और इस वजह से वो इस तरह से हैं. और जैसे ही वो John Biro उनके घर से जाता है, एरम कहाँ जाता है? मुराद के घर. और वहां जाकर के क्या देखता है कि मुराद जो है वो एक पीच के पेड़ पे, पीच ट्री पे बैठा हुआ है, और एक रॉबिन जो है स्टूडेंट्स, वो एक चिड़िया होती है. तो वो रॉबिन जिसको चोट लगी हुई थी वो उसको उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है. और तब जो है एरम को पता चलता है, वो मुराद को कहता है कि इसका मतलब कि तुम्हारे पास ये घोड़ा एक महीने से है. तो वो कहता है, एरम कहता है मुराद को कि तुम इस घोड़े को तब तक वापस नहीं लौटाओगे जब तक मैं सीख ना लूं घुड़सवारी. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. We could keep the horse a year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. What? Are you inviting a member of the Garo Ghilanian family to steal? The horse must go back to its true owner. When? In 6 months at the least, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. One morning, on the way to Fitwijan's deserted vineyard, we ran into the farmer, John Biro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. Good morning, John Biro, my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. So, abhi kya hua? Ki usne kaha ki tum jo is ghode ko nahi lauta sakte jab tak mujhe ghursawari karna nahi aa jata hai. तो मुराद कहता है, लेकिन तुम्हें तो अभी 1 साल लगेगा अच्छे से घुड़सवारी सीखने में. तो एरम कहता है कि ठीक है, हम लोग इस घोड़े को 1 साल तक छुपा के रखेंगे. तभी मुराद कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि हमारे ट्राइब में से एक मेंबर इस घोड़े को चुरा के रखे? 6 महीने से ज्यादा मैं इस घोड़े को अपने पास नहीं रखने वाला हूँ. और फिर यही हुआ, वो लोग हर दिन 2 वीक के लिए सुबह सुबह जाते थे घुड़सवारी करने के लिए. जब तक मुराद उस घोड़े को चला रहा होता था, तब तक घोड़ा सही तरीके से बिहेव करता था. और जैसे ही एरम की बारी आती थी, वैसे ही उसे वो फिर से उसे अपनी पीठ से गिरा करके वाइनयार्ड्स की तरफ भाग जाता था. और एक दिन क्या हुआ कि John Biro से वो लोग आमने सामने आ गए. और तब फिर से मुराद ने कहा कि ठीक है, तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे आता है कि एक फार्मर से कैसे डील करें. तो आप देख सकते हो कि ये जो मुराद है वो बार बार एरम को यही बात कहता है, क्योंकि वो अपना बड़ापा दिखाना चाहता है. वो दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे चीजें हैंडल करना आती है. और तब John Biro ने जैसे ही उस घोड़े को देखा, वो उस घोड़े को अच्छे तरीके से चेक करने लगा, देखने लगा. तब मुराद ने उसको ग्रीट करा गुड मॉर्निंग बोल के. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. वॉट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? My heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Biro said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. May I look into his mouth? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse, tooth for tooth. I could swear it is my horse, if I didn't know your parents. The fame of my family for honesty is well known to me. Yet, the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. Good day, John Biro, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Biro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a noise. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with the dogs. My cousin Murad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. That afternoon, John Biro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Khosrowe, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet, man, quiet. Your house has been returned. Pay no attention to it. सो जब जॉन बायरो ने उनके घोड़े को अच्छी तरीके से चेक करा तो उन्होंने पूछा कि तुमने इस घोड़े का नाम क्या रखा तो मुराद ने आर्मेनियन ने बोला माय हार्ट इस घोड़े का नाम जो है आर्मेनियन ने बताया तब जॉन बायरो ने कहा कि इसके वैसे ही दांत हैं वैसे ही बॉडी है जिस तरह से मेरे घोड़े की थी अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं ये सोचता कि ये मेरा ही घोड़ा है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम गारो गिलेनियन ट्राइब के हो और मैं तुम्हारी ऑनेस्टी को जो है अप्रूव करता हूँ इस वजह से मेरा दिमाग भले ही ये कह रहा है कि मेरा घोड़ा है लेकिन मैं अपने दिल में जानता हूँ कि मेरा घोड़ा नहीं है बल्कि मेरे घोड़े का कोई ट्विन ब्रदर है ना तो अब क्या होता है अब ये दोनों लड़के जो हैं वो बिल्कुल अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो जाते हैं कि मतलब ये लोगों ने इसका घोड़ा चुराया है लेकिन फिर भी इसको जो है हमारी बस ट्राइब के लिए ये उसको चोरी नहीं मानता है और ये लोग अगले सुबह क्या करते हैं वो जॉन बायरो के यहाँ पे इस घोड़े को लौटा देते हैं और जॉन बायरो अगले ही दिन इसके घर मतलब एरम के घर आता है और उसकी माँ को दिखाता है कि देखो यही वो घोड़ा था जो कि मुझसे चोरी हो गया था लेकिन अब ये जो मुझे मिला है वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त भी है और ज़्यादा इसका जो टेम्परमेंट है मतलब इसका जो एंगर मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छा हो चुका है यानी इसको ये ज़्यादा अब इधर उधर नहीं जाता है और इस चीज़ पे अंकल खुसरोव को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अरे सुनो तुमको तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना अब बस हो गया सब चंगा सी अब इस बात पे ध्यान मत दो और यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म अब हम लोग इसके इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन यू विल प्रोबेबली अग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग सो ये स्टोरी भले ही कोई एक्शन स्टोरी नहीं है लेकिन फिर भी ये जो ऑनेस्टी है और इस ऑनेस्टी की वजह से कोई इन पे शक नहीं करता है और ये किस तरह से हर दिन सुबह चोरी चोरी ये लोग घुड़सवारी सीखते हैं ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देते हैं एंड देन इनके जो कैरेक्टर्स हैं जैसे अंकल खुसरोव ये भी इस स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर टू डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कंसाइन स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड तो इन लोगों को एक्चुअली एहसास हो गया था अपनी गलती का और ये भी कि ये अपने पूरे ट्राइब के स्टेटस को नाम को अप मिट्टी में डुबोने वाले हैं इस वजह से उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था ना कि वो लोग डर गए थे क्वेश्चन नंबर थ्री वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट एंड दैट लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम द स्टोरी बिगिंस इन अ मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सो यहाँ पे क्या है कि ये जो नरेटर है वो अपने बचपन की बात बताता है सो ये आपको एक एक्सरसाइज मिल रही है कि आप अपने कोई बचपन का इंसिडेंट इसी तरह से एक स्टोरी में लिखिए एंड आई एम श्योर ये काफी इंटरेस्टिंग होगा. क्वेश्चन नंबर 4. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स हु बिलोंग टू अ ट्राइब इन आर्मेनिया. मुराद एंड आरम आर मेंबर्स ऑफ द कारोघिलानियन फैमिली. नाउ लोकेट आर्मेनिया एंड असारिया ऑन द एटलस एंड प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द कारोघिलानियन ट्राइब. यू मे राइट अबाउट पीपल, देयर नेम्स, ट्रेट्स, ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स एज सजेस्टेड इन द स्टोरी. सो यहाँ पे आप लोगों को एक टास्क मिलता है कि आप लोगों को अपने एटलस में आर्मेनिया और आर्सेरिया को लोकेट करना है. आर्मेनिया आपको मिलेगा यूरोप और एशिया के बीच के जगह पे आपको आर्मेनिया मिल जाएगा और आप लोगों को उसके बारे में एक तरह का चार्ट प्रिपेयर करना है इन दोनों कंट्रीज के बारे में, जहाँ पे आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है कि वहाँ पे नाम किस तरह से रखे जाते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कैसा है और वहाँ की इकोनॉमी कैसी है. सो आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये. इसमें लास्ट में हमें एक मोरल भी मिल जाता है. आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस स्टोरी को वापस से पढ़ेंगे और मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी. थैंक यू.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.